लास्ट संडे मैंने आपको प्रार्थना के विषय में कुछ बताया था, उसके बाद हमने प्रार्थना भी की और मैंने देखा कि सिर्फ मैंने और पास्टर राहुल ने सिर्फ प्रार्थना की है ना, और किसी ने किया? मुझे लगता है कि प्रार्थना के विषय में समझाने के बाद सब घबरा गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, प्रार्थना को समझ के प्रार्थना करना अच्छा रहता है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँचे। इस सीलिंग में टकरा के यहीं रुका रहे तो फ़ायदा कुछ नहीं है, है ना। हमें एक झूठी तसल्ली होगी कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, तो फिर हमें देखना चाहिए ना कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम वो मांग रहे हो जो हम चाहते हैं और वो ना मांग रहे हो जो प्रभु चाहता है। ये बात आपको जब कही गई थी कि हमें आत्मा के द्वारा या आत्मा की सहायता से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें प्रार्थना में वो बातें बोलनी चाहिए जो परमेश्वर हम चाहता है कि हम बोलें, तो जाहिर है कि सबके मन में सवाल आया होगा कि वो कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा। और मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हमारे पास दो जरिया है, एक पवित्र आत्मा है और एक पवित्र शास्त्र है। फिर भी मैं जानता हूं कि लोगों को संतुष्टि नहीं हुई और कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में आए होंगे। इसका मतलब आज तक जो हम प्रार्थनाएं कर रहे थे वो सब ऐसी ही थी, वो सारी प्रार्थनाएं गलत थी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। और इसलिए शायद लोगों ने उस दिन प्रार्थना करने से इनकार किया नहीं, सोच में पड़ गए कि हम कुछ प्रार्थना या मैं कुछ प्रार्थना करूं और वो गलत निकले तो अगले संडे फिर फास्ट जेम्स कुछ बोलेंगे, इससे अच्छा है कि अभी चुप रहता, देखता हूं, सुनता हूं कि या सुनती हूं कि पास्टर जेम्स कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, देखते हैं, हो सकता है कि हमें समझ आए। अच्छी बात है, आपको ये बताना काफ़ी नहीं है ना कि प्रार्थना आत्मा की मर्जी से करनी चाहिए, आपको ये भी दिखाना है ना कि आत्मा की मर्जी से कैसे प्रार्थना होती है, तभी समझ आएगा ना आसानी से। तो यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में शिक्षा दी थी मत्ती के 6 अध्याय में, जिसके विषय में एक बार पिछली बार जब चेताली ने आपको प्रार्थना के विषय में सिखाया था तो समझाया भी था। यीशु मसीह के चेलों में से 12 चेले थे जो खास थे, जिनको अपोस्टल्स कहा गया है, ये सारे के सारे यहूदी थे। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, ये लोग 5 बार प्रार्थना करते थे, दिन में 5 बार प्रार्थना करना यहूदियों के लिए अनिवार्य था। यानी बचपन से अगर यहूदी लोगों को, जहाँ तक मुझे याद है, इसमें गलत भी हो सकता हूँ, आप एक बार इंटरनेट पर चेक कर लेना, 13 साल की उम्र से पहले उनको पुराण नियम की 5 किताबें जिसको थोरा बोलते हैं, यानी उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था की जो 5 किताबें हैं उनको रटी हुई होनी चाहिए, उनके साथ उसमें सारी बातें उनको मालूम होनी चाहिए, और 5 बार प्रार्थना करना, यानी बचपन से ये लोग प्रार्थना करते आए हैं। क्या करते आए हैं? प्रार्थना करते आए हैं। और फिर जब ये यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तो प्रभु से पूछता है, ये आपको मिलेगा लूका रजित सुसमाचार का 11 अध्याय में, अब हम जा नहीं रहे अभी। उन लोगों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ, क्या जरूरत थी? ये लोग डेली 5 बार प्रार्थना करते थे, इन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को रोज प्रार्थना करते हुए देखा है और इनको कुछ समझ आया जरूर होगा कि यीशु जो अकेले में जाके प्रार्थना करके फिर बाद में निकलता है, फिर हमारे साथ रहता है, लोगों के बीच में जा रहा है और कुछ कुछ होता है, तो इस यीशु की प्रार्थना हमारी प्रार्थना से अलग हो सकती है, कुछ है यीशु की प्रार्थना में। तो चेलों ने इच्छा जाहिर की कि प्रभु, जैसे योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी सिखाओ। तो इसका मतलब प्रार्थना में सुधार हम ला सकते हैं। अगर उस समय के चेलों को प्रार्थना सीखने की जरूरत थी जो बचपन से रोज कम से कम 5 बार प्रार्थना करते थे, तो हमें भी प्रार्थना को समझने की जरूरत है। और हम ऐसे चर्च ये सोच के ना चले कि हम हमेशा सब कुछ सही कर रहे हैं, हो सकता है कि हम सही नहीं कर रहे हो, तो जहां पर हम सही नहीं है वहां पर हमें थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, और हम करेंगे, करके हम आगे को बढ़ेंगे। आप लोग सब मेरे साथ हैं, सहमत हैं? ठीक है, नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे वचन से दिखाऊंगा, जब आप देख चुके होंगे आप परमेश्वर से तो असहमत हो नहीं सकते। अब यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस रीति से प्रार्थना करो। ये मत्ती का छठा अध्याय में आपको मिलेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये सब बातें बोला करो, प्रभु ने कहा कि इस रीति से, यानी तुम्हारी प्रार्थना करने का जो तरीका है वो इस रीति से होना चाहिए। अब प्रभु ने कहा कि सबसे पहले तुम क्या बोलोगे कि हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है तेरा नाम पवित्र है। यानी सबसे पहले मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वर्ग में है, यानी वहाँ से उसको सब कुछ दिखता है। वो आसमान और पृथ्वी की रचना करने वाला परमेश्वर है, सब चीज़ों का मालिक है वो, और वो पवित्र है। मतलब क्या है, वो बाकी ईश्वरों के समान नहीं है, ना तो वो बाकियों के समान है, बाकियों के तुल्य नहीं है, ना कि उसकी तुलना बाकी ईश्वरों के साथ की जा सकती है, जिन ईश्वरों को हम पहले जानते थे या जिनकी हम पूजा करते थे, जिनको हम पुकारते थे, ये उन सारे ईश्वरों से बिल्कुल हटके हैं। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह से प्रार्थना करने वाले को मालूम होना चाहिए। जब तक ये बात आपके हाथ हृदय में स्थिर नहीं है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होगी। दूसरी बात, परमेश्वर यीशु मसीह ने यह नहीं सिखाया कि तुम जब प्रार्थना करो तो इस तरह से बोलना हे हमारे परमेश्वर, बोला कि हे हमारे पिता। क्या तुम्हारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है? वचन के अनुसार प्रार्थना करने का अधिकार सिर्फ उन लोगों के पास है जो परमेश्वर के बच्चे हैं। जो परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं, जो सिर्फ सृष्टि की गिनती में आते हैं, उनके पास उस परमेश्वर से जो सृजनहार है प्रार्थना करने का अधिकार है नहीं, क्योंकि प्रार्थना रिश्ते पर आधारित है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो हमारा पिता है, यानी हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम प्रार्थना में कुछ कह सकते हैं, मांग सकते हैं। तो प्रार्थना, इसमें समय लगता है ना, इसका मतलब हम जल्दीबाजी में प्रार्थना नहीं कर सकते। उसके बाद प्रभु ने कहा कि और जब तुम प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले तुम परमेश्वर से क्या मांगोगे? रोटी, कपड़ा और मकान? नहीं, परमेश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि फिर तुम परमेश्वर से क्या मांगोगे? कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। अभी हमने नौकरी की बात नहीं की, अभी हमने पैसे की बात नहीं की, अभी स्कूल में एडमिशन की बात नहीं करी, हमने एग्जाम में पास होने कोई बात नहीं करी। सबसे पहले क्या कहा कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। कहाँ आए? हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में आए, लेकिन उससे पहले हमारे अपने जीवन में तेरा राज्य हो। मतलब क्या है, मैं जल्दी जल्दी बताते हुए निकलूंगा कि सबसे पहले परमेश्वर तेरी प्रभुता जो है, तेरा राज्य जो है मेरे जीवन में हो। यानी मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर, तेरी मर्जी में मुझे चलना चाहिए। लेकिन वो तो कहना बहुत आसान है, क्यों? वो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, लेकिन मेरी मर्जी ना चलाते हुए उसकी मर्जी को चलाने के लिए मुझे मालूम होना चाहिए ना कि उसकी मर्जी क्या है। उसके लिए उसे सुनना होगा, उसके लिए उसकी तरफ देखना होगा, उसके लिए वचन में जाना होगा, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना होगा। तो प्रार्थना ऐसा नहीं है जैसे हम सोचते हैं, है ना। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो अभी तक प्रभु ने क्या कहा, पहले ये जानो कि तुम किससे मांग रहे हो, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता है, क्या वाकई में वो तुम्हारा पिता है, या वाकई में तुम उनका बच्चा बन गए, तुम उस बच्चा बन गए हो। तो फिर सबसे पहले ये इच्छा करो कि उसका राज्य तुम्हारे जीवन में हो और उसकी इच्छा इस पृथ्वी में पूरी हो जाए। हम अपने आप को भूल जाते हैं, बाकी सबको याद रखते हैं कि इस पृथ्वी में परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। सबसे पहले मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए ना, तभी तो पृथ्वी में होगा। उसके बाद प्रभु ने कहा कि ये सारे कुछ सेटल हो जाए तो अपनी जरूरतों को लेके मांग सकते हो। इससे पहले अगर आप छठा अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, उससे पहले यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अन्य जातियों के समान प्रार्थना मत करना। मतलब अन्य जाति के लोग अपने ईश्वरों से प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा बोलने से बहुत कुछ होगा। जो अन्य जाति का मतलब है जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके समान प्रार्थना मत करना। फिर कैसे करना है? प्रभु ने कहा कि तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर को मालूम है कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या क्या है। तो इसका मतलब हमारी हमारे पर्सनल हमारी निजी जीवन में जो ज़रूरतें हैं उसको एकदम बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इन सब चीज़ों के लिए पहले प्रार्थना करें, मांगें। और जब मैंने ऐसा प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने देखा कि बाकी सब चीज़ों के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुआ। बाकी परमेश्वर तो जानता मुझे क्या क्या चाहिए, वो एक तसल्ली मिलती है। आपको एक बात बताएं, एक सीक्रेट बात बताऊं। पिछले साल की बात है, मैंने आपको बताया भी था। मैंने एक बार यीशु मसीह से पूछा, एक दिन मैं अपने लिविंग रूम में सोफे में बैठ के प्रभु से पूछा, प्रभु बाइबल में 2-3 जगह पे लिखा है कि तू रोज सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग पो फटने से पहले प्रार्थना करता था। तो प्रभु किस तरह की, क्या पिता से क्या मांगता था, मतलब समझ मुझे भी समझ आया कि क्या। तो और मैंने आपको आप में से किसी को याद है, फिर प्रभु ने मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने एक अनोखी शांति उस समय महसूस किया और इतनी शांति आई कि मैं सो गया बैठ के, जैसे हम लोग सब प्रार्थना में सो जाते हैं ना। तो इतनी शांति आई कि मुझे कुछ समझ आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि प्रार्थना में प्रभु ने क्या मांगा होगा। लेकिन पिछले मंगलवार को सुबह जब मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि यीशु मसीह किस तरह की प्रार्थनाएं करता था या क्या मांगता था पिता से। आप सबके कान खड़े हुए ये जानने के लिए कि यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की थी। तो आप अभी कहाँ भरे, मत्ती का सुसमाचार में है ना, तो मत्ती में ही से हम देखते हैं, इसका 9 अध्याय में चलते हैं। देखिए 9:37-38 में प्रभु ने अपने चेलों से कहा, देखो पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, यानी मजदूरों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। यानी आज की भाषा में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के लिए काम करने वाले लोगों की कमी है, इसलिए तुम परमेश्वर से मांगो कि हमें हमारे देश के लिए और मजदूर भेजो। तो ये जो बात यीशु ने अपने चेलों से कही कि तुम प्रार्थना करो, क्या आपको नहीं लगता था कि प्रभु भी स्वयं ये प्रार्थना करता था? क्या प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ऐसा कुछ प्रार्थना करने के लिए कहेगा जो वो स्वयं ना कर रहा हो? लूका रजिस सुसमाचार का 6 अध्याय में चलते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसका 12-13 पद में जाते हैं हम। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इससे आप कन्विंस हो जाएंगे। 6 अध्याय लूका रजिस सुसमाचार, इसका 12 पद में लिखा है कि उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह पहाड़ों पर प्रार्थना करने गया और ये सारे दिन लोगों के बीच में रह के उनके लिए प्रार्थना करने की, उनकी चंगाई देने की, सब कुछ करने के बाद लिखा है कि वो प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आप लोग मेरे साथ हैं, दिन भर वो काम कर रहे थे, रात को प्रार्थना करने गया, अपने सारे चेलों बाकी लोगों से दूर चला गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ा, एक एकांत स्थान में बैठ के लिखा है कि सारी रात प्रार्थना की। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। चेलों को क्या प्रार्थना करने के लिए कहा था? कि मजदूरों की कमी है इसलिए प्रार्थना करो कि मजदूर मिले। रात भर यीशु मसीह किसके बारे में प्रार्थना कर रहा था कि मैं किसको चुनूं? परमेश्वर मुझे वर्कर्स चाहिए, मजदूर चाहिए, काम करने वाले चाहिए, मुझे दो। तो परमेश्वर ने 12 जनों का नाम दिया। प्रार्थना खत्म करके जब वापस आया, लोगों के बीच में आया, बहुत सारे चेले थे यीशु मसीह के, उनमें से 12 को चुना जिनको परमेश्वर ने दिखाया था। अब आप एग्री करते हैं, ये यीशु मसीह की एक प्रार्थना थी। और ये जो प्रार्थना यीशु ने कहा अपने उन चेलों से जो उस समय यीशु मसीह के सामने थे कि तुम प्रार्थना करते रहो, वो आज हम कर सकते हैं, हमें करनी भी चाहिए। हमारे देश में मजदूरों की कमी है, इस बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है। अब मैं यीशु मसीह ने क्या बताया था, जब तुम प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है आसमान में और वो चाहता है पृथ्वी पर हो, तो हमें क्या मांगना चाहिए कि परमेश्वर हमें और मजदूर चाहिए, काम करने वाले चाहिए, हमें और इवेंजलिस्ट चाहिए जो प्रचार करे, और टीचर्स चाहिए जो वचन को सही रीति से सिखाए, हमें ऐसा भविष्यवक्ता चाहिए जो तुझसे सुन के हमें बताए, हमें हमें पास्टर्स की जरूरत है जो विश्वासियों को संभाले, और लोगों की हमें जरूरत है। ये हम 100% कर सकते हैं, मांग सकते हैं, क्योंकि ये वचन में है। मैंने पिछली बार आपको बताया ना, जो वचन में लिखा है वो आप प्रार्थना में मांग सकते हैं, या फिर पवित्र आत्मा जो आपको दिखा रहा है वो आप मांग सकते हैं। वचन संहिता 2 में लिखा है मुझसे मांग तो हम मांग सकते हैं ना। वचन संहिता 2 में आत्मा में होकर दाऊद क्या लिखता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोग दे दूंगा। तो जाति जाति के लोगों को हम मांगेंगे परमेश्वर से कि हमारे इस देश में बहुत सारे लोग हैं, चाइना के बाद, चीन के बाद सबसे ज्यादा आबादी इस देश में है, लोगों की कमी नहीं है। परमेश्वर हम मांग रहे हैं कि ये सब लोग तेरे पास आए, तेरे वचन को सुने और विश्वास करें। हम मांग सकते हैं। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब मत देना, सिर्फ सोचने के लिए। हम में से कितने लोग हमारी डेली की प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो तुझे नहीं जानते ये विश्वास करें, ये सुसमाचार सुने? हम कितनी बार मांगते हैं, या हम कितनी बार परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे देश में काम करने वालों की कमी है, अभी सब लोगों ने सुसमाचार ठीक से नहीं सुना है, तो हमें सुनाने वाले की जरूरत है। हमने कभी प्रार्थना की है ऐसा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो अब से हम करेंगे क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है? यदि इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे ना, तो बाकी चीजों के लिए प्रार्थना करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। एक और दिखाता हूं मैं आपको, कुलोसियों की पत्री। कुलोसियों की पत्री में आप देखेंगे कि उस समय के जो लीडर्स थे चर्च के, वो क्या प्रार्थना करते थे, उसमें से हमें कुछ सीखने को मिल सकता ना। कुलुसियों की पत्री का 1 का 3 पद में पौलुस कहता है कि इसलिए जब भी मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचता हूं, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं तुम्हारे लिए। हर कलीसिया के लिए पौलुस कहता है कि मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं तुम्हारे लिए। तो ये जो पौलुस, अब ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया के यानी विश्वासियों के लिए रोज परमेश्वर का जो धन्यवाद करता था वो परमेश्वर की मर्जी होगी, इसलिए तो पवित्र आत्मा ने लिखवाया है यहां पे। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम बाकी विश्वासियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए तो लिखी। लेकिन और भी एक खूबसूरत बात दिखाता हूं, 9 में वो कहता है कि इसलिए जिस दिन से ये सुना है, यानी तुम्हारे विश्वास के विषय में कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती, दो चीजें हैं इसमें। पिछली बार भी मैंने बताया था कि सिर्फ प्रार्थना नहीं, विनती भी है, निवेदन भी है, ये सब कुछ हमें करना है। एफिसियों की पत्रिका 6 के अनुसार, मैंने हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो अब साधारण शब्दों में पौलुस क्या प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इस कलीसिया का एक एक जन तुझे पहचाने, तुझे जाने, तुझे पर्सनली जाने कि तू है कौन। इन्होंने तुझे मान तो लिया और मानने के कारण उद्धार पाया, मुक्ति पाई, लेकिन तुझे पर्सनली ये जाने और उसमें वो परिपूर्ण हो जाए। अब मैं सवाल पूछूंगा, जवाब मत देना, क्या हम में से किसी ने आज तक ऐसी प्रार्थना की है अपने लिए? ये जो प्रार्थना पौलुस करता था ना विश्वासियों के लिए, ये हर विश्वासी को करनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए तो यहां पे लिखा है कि हमें डेली ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे पहचानना चाहता हूं। पूरे ज्ञान और समझ के साथ जब हमारा ध्यान इन बातों पे रहेगा ना प्रार्थना में, तो और चीजों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी, या बहुत कम बार हम मांगेंगे परमेश्वर से इस बाकी जरूरत की चीजें। और इस तरह की प्रार्थना आपको इफिसियों की पत्री में भी मिलेगी। पहला अध्याय का 17वां पद में पौलुस कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि और समझ मिले कि तुम परमेश्वर को जान सको, या तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन मिले, आत्मा का आत्मा की ओर से बुद्धि और प्रकाशन मिले कि तुम जान सको कि यीशु मसीह कौन है। इस तरह की प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए, दिल से मांगना चाहिए कि परमेश्वर मुझे पता चले। और फिर इफिसियों की पत्री में भी लिखा है कि हमारे आंखें, हमारे अंदर की आत्मिक आंखें खुल जाएं। तो इसका मतलब अगर पौलुस कहता है कि इफिसियस जैसे चर्चेस के लिए कहता है कि वहां के विश्वासियों की आंखें खुल जाए, तो जाहिर है कि आंखें जो है अभी बंद है, हम मान के राजी नहीं है। नहीं, हमारे आंखें खुल गई है पूरी तरह से, नहीं, हमारे आंखें कुछ जगह पर कुछ बातों में बंद हो सकती है। परमेश्वर जहां बंद है वो खुल जाए, इस तरह की प्रार्थना हमें करनी चाहिए ना, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। बहुत सारी बातों में हमारी आंखें जो है बंद होगी, और पिछली बार मैंने आपको कहा था ना कि हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है। जो मत्ती 18 में लिखा है ना कि दो जन पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करें और कुछ मांगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और ज्यादातर जो मैंने टीचिंग सुनी है उसमें यह कि बस दो जन एग्री हो जाए, कुछ भी मांगो मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि 19 और फिर 20 पदों में से कि उसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। परमेश्वर के साथ हम राजी हो जाएं, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। कारण क्या है? जब दो व्यक्ति परमेश्वर के साथ किसी भी एक बात को लेके एक मन है, उनका मन एक है, या दोनों परमेश्वर के साथ सहमत है, तो वो दोनों आपस में भी सहमत है। कारण क्या है? क्योंकि दोनों परमेश्वर के साथ सहमत है। क्योंकि दोनों के पास प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक ही बात है, एक ही बात को जिसको परमेश्वर हाँ कहता है उसी को वो दोनों भी हाँ कह रहे हैं, इसलिए वो आपस में भी सहमत हैं। जैसे गिटार ट्यूनर होता ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर होता है जिससे आप गिटार को ट्यून करते हैं। आपने एक ट्यूनर लेके एक गिटार को ट्यून किया, बिल्कुल सही, दूसरे गिटार को भी ट्यून किया, तीसरे को भी किया, ठीक। अब तीनों के साथ आपस में ट्यून है ना, एक जैसे बजेंगे ना तीनों, क्यों? क्योंकि तीनों का स्टैंडर्ड एक ही है, अभी तीनों एक ही ट्यूनर से ट्यून्ड है, दे आर इन ट्यून विथ ईच अदर, जो अंग्रेजी में बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में जब हम कहते हैं ना कि इन ट्यून विथ ईच अदर, उसका मतलब है कि दोनों एग्रीमेंट में हैं. तो हम परमेश्वर के साथ ट्यून में हैं. जब हम परमेश्वर के साथ सहमत हो जाते हैं तो हम आपस में भी एग्रीमेंट में हैं. यीशु मसीह का कहने का मतलब ये था, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मेरे साथ सहमत हो जाओ, तुम आपस में भी सहमत होंगे, फिर जो तुम मांगोगे हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है. तो आज हम हिम्मत करें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अगले संडे करेंगे. इस पूरे हफ्ते हम घर में थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत करके प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कितना परिवर्तन आता है. आप करके देखिए, क्योंकि वचन में जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ मैं बताता हूँ, आपको करके देखना चाहिए, फिर कहना चाहिए कि हाँ ये सही है, ऐसा होता है. ये नहीं कि मैंने बताया और आपने सुन लिया और आपने हाँ भर दिया कि हाँ जी पास्टर जेम्स ने सिखाया तो सही होगा. ऐसा नहीं, आप करके देखिए. रोज परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे पहचानना चाहता हूँ, फिर देखो परमेश्वर क्या करता है. इफिसियों की पत्री में मैंने बोला था ना कुछ आपको, इफिसियों की पत्री का तीसरा अध्याय में एक प्रार्थना है, वो भी हम देख लेते हैं. इसका 14वां पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे. इफिसियों की पत्री का 3:14 में पौलुस कहता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ. मतलब क्या है, मतलब क्या है वो, क्या कहना क्या चाह रहा है? कि मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकता हूँ, यानी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ परमेश्वर से. क्या मांगता हूँ? कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ. बहुत लंबी सेंटेंस है, बहुत लंबा है. साधारण भाषा में ये है कि मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, परमेश्वर अपना दान इन सब बच्चों को देना कि वो अंदर से मजबूत हो जाए तुम्हारी सामर्थ से. बाहर से शारीरिक दृष्टि से तो खाना अच्छा खाओ और कसरत करो तो मजबूत बलवंत रहेंगे, है ना. तो पौलुस ने वो प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वो समझ सारे विश्वासियों के पास है, खाना अच्छा खाओ और जिम में जाओ तो स्ट्रांग रहेंगे. लेकिन अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में, आत्मा में, उनकी अपनी आत्मा में मजबूत रहने के लिए, बलवंत बनने के लिए वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर अपना दान देना इनको, कि तेरी सामर्थ से वो सामर्थ्य हो जाए. ये प्रार्थना हम कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है. तो आप देख रहे हैं कि एक विश्वासी की प्रार्थना में सबसे पहले ध्यान किस बात की ओर होनी चाहिए? आत्मिक बातों पर, कि परमेश्वर को जानना जरूरी है, परमेश्वर की पहचान मुझे मिले, परमेश्वर की बुद्धि और समझ मुझे मिले, क्योंकि बाकी सब काम फिर आसान हो जाता है. लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस तरह की प्रार्थनाएं नहीं करते थे. हम बाकी सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे सामने दिखती है. उन बातों के लिए प्रार्थना करना मना नहीं है, लेकिन अगर हम आत्मिक बातों पर ध्यान रखेंगे, अगर हमारा फोकस परमेश्वर पर होगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि सामने जो चीजें दिख रही है उनमें से कौन सी बात के लिए प्रार्थना करनी है और किसके लिए नहीं करनी है. यहां तक कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रार्थना, हमारी प्रार्थना के बिना बहुत सारी बातें हो जाएंगी. क्या प्रभु ने नहीं कहा था कि सबसे पहले मेरा राज्य की खोज कर, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी? मतलब क्या है? अगर हमारा ध्यान प्रभु की बातों पर रहेगा ना, तो उन बाकी सारी चीजें जो हमें चाहिए वो हमें मिलती रहेगी. तो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? कहने का मतलब ये हुआ ना कि हमारा हमारी प्रार्थनाओं में हमारा ध्यान हमेशा प्रभु पर होना चाहिए कि प्रभु क्या चाहता है, तब हम जो चाहता है वो भी प्रभु कर देगा. इसका मतलब प्रार्थना में थोड़ा सा सुधार हमें लाने की जरूरत है। सत्रह पद में पौलुस ने यह प्रार्थना की कि विश्वास के द्वारा मसीह विश्वासी लोगों के हृदय में बसे रहें और वे प्रेम में जड़ पकड़े, यानी हमारा हमारी मसीह जीवन की जड़ जो है वो परमेश्वर के प्रेम में प्यार में इतनी नीचे को जाए कि हम उसमें स्थिर रह सके। आप देखिए बाइबल में किस तरह की प्रार्थनाएं होती थी कि हम परमेश्वर के प्यार में इतना मजबूत इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम प्यार करना शुरू करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के प्यार के जो चार पहलू हैं उन्हें पहचान सकें, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई को पहचान सकें, द फोर डिमेंशंस ऑफ गॉड्स लव। ये सब प्रार्थना ही होती थी पहली शताब्दी में। और 19वें पद में क्या लिखा है पढ़िए कि और मसीह के उस प्रेम को जान सको, हमारे लिए मेरे लिए, और उस प्यार के ज्ञान से हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम परिपूर्ण हो जाएंगे। सोचिए जरा कि एक विश्वासी परमेश्वर की भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। आप अपने बारे में सोचिए, दैट यू आर फिल्ड विथ ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भरपूरी से आप पूरी तरह भर जाए। पहली शताब्दी में इस तरह की प्रार्थनाएं होती थी। हम 21वीं शताब्दी में हम भी ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। मैं अपने लिए ऐसा प्रार्थना करना शुरू की कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरी भरपूरी से मैं परिपूर्ण हो जाऊं, तब बहुत फर्क पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे दिखाई, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि इतना बताना काफ़ी है और हम इसको कोशिश करेंगे, इस हफ्ते करेंगे। इसी अध्याय में एक और बात मैं आपको दिखाता हूं। हम अक्सर इस वर्स को पढ़ते हैं और बोलते, इसके अनुसार हम अक्सर बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हम बोलते हैं, सही है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक परमेश्वर हमारे लिए काम कर सकता है। लेकिन पौलुस जब ये बात लिख रहा है या पवित्र आत्मा पौलुस से ये लिखवा रहा है, किस संदर्भ में लिखवा रहा है, कि हमारी प्रार्थनाएं इस रीति से हो कि हम परमेश्वर के प्यार में जड़ पकड़ें, परमेश्वर के प्यार में हम मजबूत हो जाए, परमेश्वर की भरपूरी से हम परिपूर्ण हो जाए। फिर वो कहता है और तुम्हारी विनती और समझ से बाहर वो काम करेगा तुम्हारे लिए। किन बातों में? इन सारी बातों में जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। बाकी बातों के लिए भी होगा, जरूर होगा। तो इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे, कब से करेंगे, कल सुबह से या आज रात से, प्रार्थना करके देखिए, इन चीजों के लिए परमेश्वर से मांग के देखिए। उसके बाद जब आप करना शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा आपकी बाकी सारी बातें जो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बिजनेस के लिए प्रार्थना मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना मत करो, या आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए प्रार्थना मत करो, या आपके जीवन में और कुछ चैलेंजेस है तो उन चैलेंजेस के लिए प्रार्थना नहीं करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वचन के अनुसार इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और पहले सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए आप मांगेंगे परमेश्वर से, तो हो सकता है कि बाकी चीज़ें मांगना आप भूल भी जाएं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि जैसे आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे ना, आपके लिए विश्वास करना आसान हो जाता है कि ये जो मेरी जरूरतें हैं ना, ये परमेश्वर कर लेगा। आपको धीरे धीरे ये समझ मिली है कि इसमें मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज मनी। लेकिन वो पर्सनली पता होना चाहिए, मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है। मुझे समझ आना चाहिए कि ये सब चीजें छोड़ दो, इसके लिए परमेश्वर को मालूम है। आपको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर पता हो जाना चाहिए, पता चलना चाहिए। अभी रियलिटी हकीकत क्या है, हम अपने जीवन की सारी बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं, है ना, फिर टेंशन भी लेते हैं। सुबह प्रार्थना मैं भी करता हूं, मैं भी करता रहा हूं, लेकिन मैं समझदार बन रहा हूं। कैसे? उसकी समझ से। प्रार्थना क्या क्या थी कि उसकी समझ से हम समझदार बन जाएं। उसकी उसको पहचान, प्रभु को जैसे आप पहचानना शुरू करेंगे ना, आप बहुत समझदार बन जाएंगे। सो बहुत सारे चैलेंजेस के लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको पता है कि आपको एक तसल्ली मिलती है। और ये योहन्ना की पहली पत्री में है, आप जाके पढ़ लेना कभी, कि जब हम इस तरह परमेश्वर को पहचानना शुरू करते ना, हमें मालूम है कि बाकी जो बातें हैं हमारे वो संभाल लेगा। तो आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं और परमेश्वर से ये विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो बातें हमने अभी सुनी है हमें अच्छी तरह समझ भी आए। वो कब समझ आएगा? जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और इसके बाद, इस पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद, अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगा, आपसे पूछूँगा कितना समझ आया, यानी अगले संडे जब हम प्रार्थना करेंगे तो मुझे पता चल ही जाएगा